आज है 29 जून दिन गुरुवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। देश भर में नागरिकों के प्रदर्शनों के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय के नाम पर पीट पीट कर हत्या करने को अस्वीकार्य बताया।
गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है।
कुछ ही देर बाद झारखंड में भीड़ ने एक और मुस्लिम युवक को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने कहा हत्या का कारण प्रतिबंधित मांस हो सकता है। विपक्ष में दरार की खबरों को जनता दल यूनाइटेड के नेता के सी त्यागी ने बेबुनियाद बताया।
हम 17 जुलाई के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद संपूर्ण विपक्षी एकता के फिर हिस्से होंगे।
लेकिन ये सब थोड़ी देर में, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भीड़ के हाथों हत्या की घटनाओं पर निंदा की है और कहा है कि गौरक्षा के नाम पर हत्या स्वीकार नहीं की जा सकती है। गुजरात के दो दिन के दौरे पर गए नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा महात्मा गांधी के मूल्यों के खिलाफ है। लिंच की घटनाओं के खिलाफ कल ही दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में हजारों लोग रैलियों में शामिल हुए थे। झारखंड के रामगढ़ इलाके में मांस ले जा रहे अलीमुद्दीन नामक के एक युवक की भीड़ ने बुरी तरह पीटा, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने उसकी गाड़ी में भी आग लगा दी थी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। झारखंड के पुलिस प्रवक्ता और आईजीआर के मलिक ने बीबीसी को बताया कि अलीमुद्दीन अंसारी रामगढ़ जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी चल रहे थे। तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां 30 जून यानी कि कल रात संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इन पार्टियों का कहना है कि जिस तरह से जीएसटी लागू किया जा रहा है, उससे छोटे और मझोले व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी पार्टियों से फिर से जीएसटी लॉन्चिंग में शामिल होने के लिए, इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विचार करने की अपील की है। रूस में विपक्ष के जाने माने कार्यकर्ता बोरिस नेमसोफ की हत्या के मामले में 5 चेचन नागरिकों को दोषी ठहराया गया है। बोरिस नेमसोफ की क्रेमलिन में 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी। पूर्व पैरामिलिट्री पुलिस अधिकारी जोर दादायेव को बंदूक चलाने का दोषी पाया गया है, जबकि 4 अन्य लोगों को साजिश रचने का दोषी पाया गया है। अदालत में बताया गया कि इन लोगों को बोरिस नेमत्सोफ की हत्या की साजिश रचने के लिए लाखों डॉलर मिले थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले 20 साल से हांगकांग के शासन के लिए चल रहे एक देश दो तंत्र का फॉर्मूला जारी रखने का वादा किया है। 20 साल पहले ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को हस्तांतरित किया था। शी जिनपिंग इसी मौके पर हांगकांग पहुंचे हुए थे। हांगकांग को काफी हद तक स्वायत्तता मिली हुई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि चीन अब अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लंदन में चीन के राजदूत लियो शुमिंग ने बीबीसी से ये कहा।
I think one country, two systems has been implemented with a great success.
मैं समझता हूं कि एक देश दो तंत्र का फॉर्मूला सफलतापूर्वक लागू किया गया है। हांगकांग भविष्य में भी अपनी सामाजिक आर्थिक प्रणाली, जीवन शैली और कानून को बरकरार रख सकेगा। 20 साल में हांगकांग पहले से बेहतर बन चुका है। हांगकांग में लोग अब लंबा जीते हैं और पहले से काफी खुश हैं। ये थे लियू शियोमिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हैम्बर्ग में अगले हफ्ते होने जा रहे G20 देशों के सम्मेलन में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल जलवायु परिवर्तन को मुख्य मुद्दा बनाने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन समझौते से बाहर होने का फैसला किया और इसके बाद एंगेला मर्केल यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगी। उन्होंने जर्मनी की संसद में कहा कि पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि पर कोई समझौता नहीं हो सकता और न ही इसे पलटा जा सकता है।
Die Europäische Union steht uneingeschränkt zu ihrer Zusage von Paris.
यूरोपीय संघ पूरी तरह से पेरिस समझौते के साथ खड़ा है और निर्णायक और बहुत ही जल्दी से इसे लागू किया जाएगा। अमेरिका के इस संधि को खारिज करने के बाद यूरोपीय संघ जलवायु परिवर्तन संधि को लेकर और प्रतिबद्ध हो गया है। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा के नाम पर हत्या करने वालों की एक बार फिर से आलोचना की है और कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुजरात के अहमदाबाद शहर में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में जब मोदी ये बात कह रहे थे, लगभग उसी समय झारखंड के रांची के पास एक और मुसलमान युवक अलीमुद्दीन उर्फ असगर अली की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम की 100वीं जयंती के लिए वहां पहुंचे थे। आप जानते हैं कि कल ही दिल्ली सहित देश के कई शहरों और कस्बों में नागरिकों ने जगह जगह पर गाय के नाम पर पीट पीट कर हत्या किए जाने या लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। इन हत्याओं पर चुप्पी साधे रखने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की जा रही थी। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकारों की खामोशी से जनता नाराज थी, लेकिन आज गुजरात पहुंचकर प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी और भावुक होकर कहा, हम कैसे लोग हैं कि गाय के नाम पर इंसान को मारते हैं।
आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा, इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है।
प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा कि किसी नागरिक को मारने का हक नहीं मिलता और कानून को अपने हाथ में लेने का भी कोई अधिकार नहीं।
भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौरव है? क्या ये गौरव अच्छा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें ये संदेश नहीं देता। हम कैसे आपात हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दे, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दे, गाय के नाम पर इंसान को मार दे।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी ने गायों को बचाने के बारे में इतना नहीं बोला जितना महात्मा गांधी और विनोबा भावे बोले थे। गुजरात के दो दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के 100 साल पूरे होने पर होने वाले समारोह में गौरक्षा के मुद्दे पर बातें की। पिछले साल अगस्त में भी प्रधानमंत्री ने गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा और हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन पिछले साल अगस्त से गौरक्षा के नाम पर हत्याएं बढ़ी हैं। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोभक्ति के नाम पर की जा रही हत्याओं की निंदा की है, लेकिन जब वो गुजरात में ये बात कह रहे थे, रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर अलीमुद्दीन उर्फ असगर अली को भीड़ ने घेर कर पीट पीट कर मार डाला। बाद में उनकी मौत हो गई। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ बाजार में भीड़ ने आज एक मांस व्यापारी अलीमुद्दीन अंसारी की पीट पीट कर हत्या कर दी। उपद्रवी भीड़ ने उनकी गाड़ी में भी आग लगा दी। भीड़ का आरोप था कि वे अपनी गाड़ी में गाय का मांस ले जा रहे थे। अलीमुद्दीन की उम्र सिर्फ 42 साल थी और वे परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। इस घटना के बाद रामगढ़ में तनाव है। इधर पुलिस का दावा है कि उनकी हत्या रंगदारी के लिए की गई है, लेकिन अपराधियों ने इसे मॉब लिंचिंग की शक्ल दे दी। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता राजकुमार मल्लिक ने बीबीसी से कहा,
ये अलीमुद्दीन अंसारी नाम है, he belongs to गिद्दी पुलिस स्टेशन, जो भी है मीट का व्यवसाय करता था और कुछ लोग इससे अपना रंगदारी, ये एक्चुअली एक बच्चे के किडनैपिंग और मर्डर केस में जेल में गया था। इससे कुछ लोग पैसा कुड़ी का अपना धंधा करता था, तो कुछ लोग इससे पैसा उधार लेता था, उसमें शायद कुछ झंझट हो गया। तो यहाँ ऐसा लगता है कि अपने जब घर से चला है लेकर के, तो लोगों ने इसका पीछा किया है। कुछ उसके जो जिन्हों ने पीछा किया है उससे कुछ एसोसिएट्स रामगढ़ में पहले से खड़े थे, तो उसको रोक करके बेसिकली प्रीमेडिटेटेड मर्डर, ट्रांसपोर्टिंग प्रोहिबिटेड मीट।
वो मांस क्या कंफर्म हुआ है कि वो मांस किस चीज का था?
वो तो अभी जाएगा, फसल से जांच होकर के आएगा ना।
सनद रहे कि महज एक दिन पहले गिरिडीह जिले में मरी गाय को लेकर हुई हिंसा में भीड़ ने एक मुस्लिम बुजुर्ग को पीट पीट कर उन्हें मारने की कोशिश की थी। भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बचा लिया। अभी वे इलाजरत हैं। दरअसल झारखंड में भीड़ के हिंसक होने की दर्जनों घटनाएं हुई हैं और ऐसे मामलों में कई लोग मारे गए हैं। मृतकों में मुसलमानों की संख्या अधिक है। झारखंड की रघुवर दास सरकार को इसके लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में सरकार और उनका प्रशासन विफल साबित हो रहा है। यह भयावह स्थिति है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसी घटनाओं को रोके, वरना स्थितियां और खराब हो जाएंगी। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
अभी बाकी है भारत चीन सीमा विवाद पर एक बातचीत, आपकी चिट्ठियां भी होंगी और एक बातचीत जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी से।
जिस तरह के भारतीय समाज की संरचना है उसमें छुटपुट छुटपुट दिक्कतें और परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन बिहार में जनता के मैंडेट को ना वो बिट्रे करेंगे ना हम बिट्रे करेंगे। ये गठबंधन 2020 तक चलेगा और तीनों दल चाहेंगे 2025 तक चलेगा और ये विजयी भी रहेगा, इसका जिस तरह का सामाजिक गणित।
केसी त्यागी से पूरी बातचीत थोड़ी देर में। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। भारत और चीन की सेनाओं के बीच लगातार चल रहे तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत की आलोचना की है और कहा है कि चीन भूटान की सीमा पर डोंगलांग इलाके में चीन अपनी ही जमीन पर सड़क बना रहा है और वहां किसी तीसरे देश को दखल करने का कोई हक नहीं है। चीन भूटान सीमा पर पिछले दिनों दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया था। भारत के लिए ये इलाका सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ ही देर पहले चीन की राजधानी बीजिंग में पत्रकार शाइबल दासगुप्ता से बात की और पूछा कि चीन के बयान का क्या अर्थ है।
जोशी जी, पहले तो ये इस तरह से देखिए कि पहली बार ये हो रहा है कि बहुत ही कठिन और बहुत ही जोरदार शब्द और फ्रेजेस चीन के मिलिट्री और विदेश मंत्रालय ने एक साथ कहा है। ये इस तरह से नहीं होता है, आम तौर से ये लोग ज्यादा सबड्यूड होते हैं और यहाँ की मीडिया को अधिकार दिया जाता है कि वो ज्यादातर भारत के विरुद्ध में कुछ बोले, बहुत तेज बातें बोले। ये एक अपने आप में अनोखी बात है कि दोनों बहुत स्ट्रांग वर्ड्स लेकर आए हैं।
लेकिन उन्होंने क्या कहा है?
चीन के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि भारत ही जिम्मेदार है उस एरिया में घुसने के लिए और घुसपैठी जो भारत के ट्रुप्स ने किया है उसकी तस्वीरें उन्होंने दूर से दिखाया और ये कहा कि ये तस्वीर बताती है कि भारत के ट्रुप घुसपैठ कर गए हैं और ये तस्वीरें वो फॉरेन मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर भी देने वाले हैं।
ये जो विदेश
विदेश मंत्रालय ने एक बात और भी कही कि अगर भारत कोई मीनिंगफुल डायलॉग चाहता है तो साथ साथ इमीडिएटली अपने ट्रुप्स को वापस भेजे अपने छावनियों में, तब जाके मीनिंगफुल डायलॉग होगा। आज ऐसे वक्त पर जब इतना टेंशन हो रहा है तभी भी वो अगर डायलॉग की बात कर रहे हैं तो ये बताती है कि चीन इस बात को समेटना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ चीन को बड़ी चिंता है कि भूटान और नेपाल में गलत सिग्नल जाएंगे और लोगों को चीन पर थोड़ा सा डर कम हो जाएगा।
तो ये कहाँ तक पहुँच सकती है बात, क्योंकि जिस तरह के वीडियो दिख रहे थे टेलीविजन वगैरह में, भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से भिड़े हुए थे जैसे स्कूल में या कॉलेज में लड़ाई होती है लड़कों में, उस तरह की लड़ाई दिख रही थी।
नहीं, ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इसलिए है कि दोनों देशों ने, भारत और चीन ने ये कसम खाई है कि हम 1962 के बाद एक भी बुलेट फायर नहीं हुआ है हमारे बॉर्डर में और क्रॉस फायरिंग का एक किस्सा भी हम नहीं होने देंगे। ये ही जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की डायलॉग मैकेनिज्म है उस पर बार बार ये तय किया जाता है, इसलिए दोनों तरफों के हाथ से बंदूक ले लिया जाता है और बाकी सारा कुछ कर सकता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन तोड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट डिसीजन है कि कोई गोली नहीं चलाएगा।
इस पूरे विवाद में जो चीन की सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी या जनमुक्ति सेना, उसका स्टैंड क्या है, वो क्या कह रही है?
वो बहुत नाराज है। बिपिन रावत जो हमारे आर्मी के चीफ है, उन्होंने ये कहा कि 2.5 फ्रंट पे हम लड़ने को तैयार है, मतलब कि चीन जो हम लोगों को डरा रहा है कि हमको 3 तरफ से लड़ना पड़ेगा, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और टेररिज्म के साथ एक साथ, तो ये 2.5 फ्रंट जिसे कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमें डराने की जरूरत नहीं, हम लड़ने को तैयार हैं। इसके जवाब में आज चीन के मिलिट्री के लोगों अफसरों ने ये कहा कि ये बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे बताती है कि भारत लड़ाई की चेष्टाएं कर रही है।
ये थे बीजिंग से पत्रकार शैबल दास गुप्ता।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
दिनभर कार्यक्रम आप बीबीसी हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। आइए लौटते हैं भारत की खबरों की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार मैदान में उतारने के मुद्दे पर विपक्षी कतारों में दरार पड़ गई है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में विपक्ष का साथ देने से इनकार कर दिया और इस पूरे मामले से आप वाकिफ हैं, आपको इसकी जानकारी है। बहरहाल, बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी से खास मुलाकात की और पूछा कि क्या एनडीए में आप वाकई ज्यादा सहज महसूस करते थे जब आप उसके सदस्य थे?
ये सच है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाला जो एनडीए था वो ज़्यादा कोहेसिव था, ज़्यादा उदार था, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, ज़्यादा सेकुलर था, ज़्यादा डेमोक्रेट था, ज़्यादा प्रोपीपल था। जितने भी कॉन्ट्रावर्शल इशूज आज एनडीए टू श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए जा रहे हैं, एनडीए वन उनसे तोबा कर चुका था, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद हो, चाहे आर्टिकल 370 को हटाने का विवाद हो। इन सब सवालों से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम लोगों ने उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यह सरकार जो आई है इसने उनको पुनः अतिरंजित करने का काम किया है। देयरफॉर वी वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग एनडीए वन।
तो एनडीए टू के जो कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उनको आपका समर्थन फिर क्यों है?
ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जिसे मैंने पहले बताया, दिस इज़ ए वन टाइम अफेयर। और गवर्नर रहते हुए बिहार का उन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मान मर्यादाएं उनका उन्होंने ध्यान रखा है, राजभवन को कभी उन्होंने अड्डा नहीं बनने दिया राजनीतिक गतिविधियों का। तो ये समर्थन पर्सनल लेवल पे है, इसका एनडीए की फिलॉसफी और स्ट्रेटेजी से हमारा कोई रिश्ता नहीं।
लेकिन जब अपोजिशन पार्टी एक साथ थी और इसको मूट किया था सबसे पहले श्री नीतीश कुमार ने ही, और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि वो फिर वो अकेले चले गए और उन्होंने अपना एक फैसला।
अपोजिशन यूनिटी में एक मुद्दा ये भी था कि राष्ट्रपति का चुनाव हम इकट्ठे मिल करके लड़ें। वामपंथी दल एनसीपी, ममता की पार्टी, जेडीएस और जेडीयू इस राय के थे किसी गैर कांग्रेसी सिविल सोसाइटी के व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। वामपंथी दलों से करुणानिधि जी के जन्मदिन के अवसर पर नीतीश कुमार जी ने श्री गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर हामी भरी थी और वो विपक्ष के लगभग सर्वमान उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी इस मामले को टाल करके अपनी ही पार्टी की एक नेता श्रीमती मीरा कुमार को बनाना चाहती थी। इसी बीच में रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा होगी। बिहार के चलते अपनी चिंताओं को और विमर्शों को श्री नीतीश कुमार ने श्रीमती सोनिया गांधी, श्री लालू प्रसाद यादव और श्री सीताराम येचुरी से शेयर किया था कि इनके उम्मीदवार होने के बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा उनका विरोध करना। श्रीमती गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने किसी स्टेज पर नीतीश कुमार जी से श्रीमती मीरा कुमार या किसी बिहार की बेटी के नाम की कभी भी कोई औपचारिक चर्चा नहीं की।
तो एक जो ऑपोजिशन यूनिटी थी उसमें इस फैसले से यूनिटी भंग होगी?
नहीं, मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ और एक बार और कहना चाहता हूँ, खाली एक घटनाक्रम से विपक्ष की एकता नहीं टूटती। उतने ही महत्वपूर्ण सवाल किसानों के हैं। सारे देश में मॉब लिंचिंग की इंसिडेंट्स हो रहे हैं, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही हैं। कल जंतर मंतर पर भी हम अपनी पार्टी की तरफ से इसी कार्यक्रम में गए थे, हम संसद में भी ये सवाल अन्य विपक्षी दलों के साथ उठाने वाले हैं और हम 17 जुलाई के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद संपूर्ण विपक्षी एकता के फिर हिस्से होंगे।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने एक समझौता कर लिया था भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है। अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो क्या ये नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से दगाबाजी है?
नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी ऐसी किसी घटना के हिस्सेदार हो सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की मदद हो।
दो जो बड़े स्तंभ है बिहार पॉलिटिक्स में, लालू यादव और नीतीश कुमार, क्या अभी भी मनमुटाव है इनके बीच में?
देखिए, कार्य प्रणाली को लेकर के, चॉइसेस ऑफ द पर्संस को लेकर के एक पार्टी में भी मतभेद और मनभेद होते हैं, और जिस तरह के भारतीय समाज की संरचना है उसमें छुटपुट छुटपुट दिक्कतें और परेशानियाँ आती रहती हैं। लेकिन बिहार में जनता के मैंडेट को ना वो बिट्रे करेंगे ना हम बिट्रे करेंगे। ये गठबंधन 2020 तक चलेगा और तीनों दल चाहेंगे 2025 तक चलेगा और ये विजयी भी रहेगा, इसका जिस तरह का सामाजिक गणित है।
बिहार में महागठबंधन के में इन अटकलों को खारिज किया है जनता दल यूनाइटेड के सी त्यागी ने कि महागठबंधन में दरार है और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में अनबन है। उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में भी ये गठबंधन जीतेगा। आज गुरुवार है और समय है आपकी राय का। लीजिए पेश हैं आपकी चिट्ठियां।
आपकी राय। आज मैं हूँ आपके साथ इंदु पांडे और मेरे साथ हैं।
नमस्कार, मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी।
तो राजेश जी, चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक चिट्ठी हमारे पास आई है हरी सिंह, गांव रुपाना, सिरसा, हरियाणा से। कहते हैं कि बीबीसी के सारे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छे लगे तब जब हमें सुनाई दे।
इसका मतलब ये शिकायत कर रहे हैं कि इनको कार्यक्रम साफ नहीं सुनाई देते। हम अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करते हैं लगातार और हमेशा जो कुछ भी हमारे बस में है कि शॉर्टवेव के प्रसारण आपको साफ सुनाई दें, लेकिन मौसम, ट्रैफिक, दूसरे चैनल और बहुत सारे ऐसे दूसरे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कई बार आपको प्रसारण सुनने में दिक्कत होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं वो हम ज़रूर करते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे विकल्प हैं बीबीसी हिंदी को सुनने के, चाहे वो मोबाइल फ़ोन पर या शाम का प्रसारण फेसबुक पर, या फिर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर आकर हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप हमारा डाउनलोड करके उस पर आप सुन सकते हैं हमारे कार्यक्रम। और शॉर्ट वेव पर जो सुनने में श्रोताओं को दिक्कत होती है, उसके लिए मैं बिना किसी लाग लपेट के उनसे माफ़ी चाहता हूँ।
ऐसा ही एक खत हमारे पास आया है संजय कुमार झा का, मधुबनी बिहार से।
जी,
लिखते हैं कि मेरी समझ से कैसे लोग कहते हैं कि बीबीसी साफ सुनाई नहीं देता। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपना रेडियो साथ ले जाता हूँ और सब कुछ बहुत साफ सुनाई देता है।
यही मैं कह रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। आसपास बहुत इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस हो तो नहीं सुनाई देता साफ। हो सकता है कि ये नेपाल में हमारा जो ट्रांसमीटर है उसके पास हो बिहार में होने की वजह से, जिसकी वजह से इनको साफ सुनाई देता हो, जबकि हरियाणा में दिक्कत हो। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सुनने में दिक्कत हो सकती है लोगों को, तो जिनको दिक्कत होती है हम उनसे क्षमा चाहते हैं।
और इन्होंने अगली बात लिखी है कि नमस्कार, भारत का मुख्य आकर्षण अखबारों की समीक्षा है, लेकिन महिला पत्रकारों से अखबारों की समीक्षा ठीक से नहीं हो पाती, उन्हें तो अखबारों के नाम तक से परहेज है।
ये तो
संजय कुमार,
संजय जी, ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि वो महिला हैं इसलिए वो ठीक से नहीं कर पाती। अगर आपने उनका नाम लिखा होता तो शायद आगे की बात होती, आपने तारीख बताई होती। बहुत सारे काम हम पुरुष, इंदु जी, हम ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन वो महिला या पुरुष होने की वजह से नहीं है, वो उस दिन उनकी तैयारी कैसी है उस पर निर्भर करता है।
कोई भी हो सकता
और
है।
वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जैसे अच्छे काम दोनों करते हैं, वैसे ही बुरे काम भी दोनों से हो सकते हैं।
और ये पोस्ट कार्ड है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का, अर्जुन सिंह भदौरिया, ग्राम कैथनपुरवा, सातनपुरवा, अमेठी, उत्तर प्रदेश से।
जी,
लिखते हैं कि ये एक नियमित और पुराने श्रोता हैं और आपकी राय में डाक से आए पत्रों का आप बेरहमी के साथ उनको कत्ल कर देते हैं, जबकि आज देखिए सारी चिट्ठियां लिखी आई हैं।
मैं देख रहा हूं कि सब पोस्ट कार्ड हैं और हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां, बल्कि आज एक भी प्रिंट आउट नहीं है। ये आमतौर पर होते हैं कुछ प्रिंट आउट जो इंटरनेट से आते हैं, लेकिन हम इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि जो डाक से चिट्ठियाँ आई हैं उनको हम कार्यक्रम में शामिल करें और ज़रूर शामिल करें।
और विवेचना इनको बहुत पसंद है। और निखिल रंजन को ये, इनको शायद मालूम नहीं है कि वो चले गए हैं, कहते हैं कि उनको कहें कि वो दुनिया जहान प्रस्तुत किया करें।
निखिल रंजन अब इस वक्त बीबीसी हिंदी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उनकी आवाज़ अभी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन वो कार्यक्रम बदस्तूर जारी है, तो वो कार्यक्रम आप सुनते रहिए।
और ये पोस्ट कार्ड है विष्णु वर्मा ककोली से, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि विवेचना में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ चालक बाला साहेब देवरस का प्रस्तुत विवेचना बहुत अच्छी लगी, और साथ में अच्छी लगी चौधरी लाल को भी, और इन सब ने रेहान फजल की काफ़ी तारीफ की है।
रेहान की, आपने जो तारीफ की है वो हम रेहान फजल तक पहुंचा देंगे। वो ये कार्यक्रम बहुत मेहनत से बनाते हैं और ये मैंने भी सुना था कार्यक्रम, और वाकई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, तो आपका शुक्रिया कि आपने इसको पसंद किया।
और इंडिया बोल मिस कर गए थे, ये पोस्ट कार्ड हमारे पास आया है गंगा सिंह रावत का, रामपुरा रोड, हल्द्वानी से, लेकिन उसकी भरपाई इन्होंने प्रोग्राम सुनकर कर ली थी उसी दिन। और इनका कहना है भारत में किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसके ऊपर ये काफ़ी सेंसिटिव अपनी बात लिखते हैं।
जी, ये सबके लिए एक और एक राष्ट्रीय समस्या है और एक बहुत बड़ी चिंता है, इस पर हम कई कार्यक्रम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
ये चिट्ठी बहुत छोटी सी है आरिफ आलम की, मठिया पूर्व चंपारण बिहार से। लिखते हैं कि मैं 17 साल का हूं, बीबीसी हिंदी सेवा 2015 से सुन रहा हूं और दुनिया जहान कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि युवा पीढ़ी के श्रोता हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हमें पत्र लिखते रहिए, हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। चिट्ठी लिखना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल से आप हमें पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
इंडिया बोल। 1 जुलाई से लागू हो रहा है GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे लेकर लोगों के मन में अब भी हैं तरह तरह के सवाल। कौन सी चीजें महंगी होंगी, क्या होगा सस्ता? अगर आपके मन में भी इसी तरह के हैं प्रश्न तो इस शनिवार हमसे जुड़िए शाम 7:30 बजे BBC इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर।
BBC इंडिया बोल। और अब समय है खेल समाचारों का। खेल समाचार लेकर आई हैं इंदु पांडे।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। टीम इंडिया कल 5 मैचों की मौजूदा वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी। भारतीय टीम पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे वनडे में 105 रन से जीत दर्ज कर 1-0 से आगे है। सीरीज के शुरुआती मैच में बारिश के कारण केवल 29 ओवर ही खेले जा सके थे। दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दूसरे मैच में टॉप क्रम के 3 बैट्समैन अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, विराट कोहली की शानदार बैटिंग के बाद अपनी बेहतरीन लाइन और लेंथ से काफी प्रभावित किया है, जिससे कि टीम ने वेस्टइंडीज में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। ये देखना वैसे दिलचस्प होगा कि ऋषभ पंत को इस मैच के जरिए वनडे डेब्यू करने का मौका मिलता है या नहीं। वैसे तो कैप्टन विराट कोहली मैच से पहले पंत को मौका देने का संकेत दे चुके हैं। और अगर हम कबड्डी की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग के 5वें सीजन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सीजन 5 के कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जोन की टीमें अपने अपने जोन की दूसरी टीमों के साथ 3-3 मैच खेलेंगी। इस तरह हर जोन के अंदर हर टीम कुल 15 मैच खेलेगी। इसके अलावा दोनों जोन की टीमें एक दूसरे के साथ 1-1 मैच खेलेंगी। और आज ICC चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम का मुकाबला वेस्टइंडीज महिला टीम से हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और ये विश्व कप का 7वां मैच है। इसके अलावा आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में भी मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने मैच के लिए अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत का अगला मैच चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से है। इस मैच में दबाव कम रहे, इसके लिए आज भारत की क्रिकेट टीम को ये मैच जीतना जरूरी होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा के नाम पर हत्याओं की निंदा की है। आप जानते हैं, आपने खबर सुनी है। सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया लोग जाहिर कर रहे हैं, इस बारे में आपको बताने के लिए हमारे नए साथी प्रशांत चाहल मेरे सामने स्टूडियो में बैठे हुए। प्रशांत, आपने सोशल मीडिया देखा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, जरा जल्दी से बता दीजिए।
मोदी के इस भाषण को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। बहुत सारे लोग उनके इस भाषण का ये कहकर स्वागत कर रहे हैं कि ये एक साहसिक कदम है, लेकिन ये कहने वालों की भी संख्या कम नहीं है कि कल जो प्रदर्शन हुए देश भर में उसको लेकर उन पर दबाव था, इसलिए ऐसा बयान आया। अफलातून अफलू हैं जो फेसबुक पर लिख रहे हैं कि पाप इनके पालतू करें और दुहाई बापू विनोबा की। वहीं जसप्रीत जो हैं उन्होंने लिखा है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर, इस भाषण के बाद ज़मीन पर क्या बदलेगा ये देखने वाली बात होगी। और फहाद मिर्ज़ा बेग जो हैं वो लिख रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है, क्या ये उसका असर तो नहीं।
ये दरअसल इतनी दिलचस्प टिप्पणियां हैं कि मैं समय होता तो आपको थोड़ा और वक्त देता, लेकिन अब समय की कमी है तो चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लिंचिंग की घटनाओं की निंदा की और कहा कि गोरक्षा के नाम पर हत्या स्वीकार नहीं की जा सकती। झारखंड के रामगढ़ में मांस ले जा रहे अलीमुद्दीन नामक एक युवक को भीड़ ने बुरी तरह पीटा, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां 30 जून यानी कल रात GST के लॉन्चिंग कार्यक्रम का बहिष्कार करने जा रही हैं। भूटान ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा पर चीन की तरफ से कराए जा रहे सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई है। इराक के मोसूल में इराकी सेना को मशहूर अलनूरी मस्जिद तक पहुंचने में कामयाबी मिलने की खबरें हैं। BBC समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही दिन भर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।